نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالی تعوذ اور بسم اللہ کو دیکھیں گے. بسم اللہ یا تسمیہ جس کو کہتے ہیں، اور تعوذ، تعوذ معنی اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو کھولیں گے، اس کی تلاوت شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو دو چیزیں یہ لازمی ہم پڑھیں گے ہمیشہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعوذ کی وجہ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ مانگ لیا کریں، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں. اس وجہ سے ہم جب قرآن کھولیں گے، جب پڑھنا شروع کریں گے، تو کبھی بھی اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہم نے پڑھنی ہے. اب یہ آج میں انشاءاللہ تعالی ان دو باتوں کا، آپ کو تعوذ کا اور بسملہ کا، آپ کو میننگ بتاؤں گی، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ قرآن کریم میں بار بار ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج ہم تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ. اعوذ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تعوذ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کی تلقین کی گئی ہے؟ اس کا معنی ہے میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. یہ خاص طور پہ جب کوئی شر ہو، دنیا کا یا آخرت کا، تو اس شر سے بچنے کے لیے انسان پناہ میں آتا ہے. کس کی؟ اللہ تعالی کی. تعوذ جو ہے نا، یہ توحید کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے، بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے توحید کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تعوذ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ کس کی لی جاتی ہے اور کیوں لی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، اس نے پناہ لے لی کہیں جا کے، فلاں نے پناہ لے لی، فلاں نے. کیوں پناہ لی جاتی ہے؟ پناہ گزین بھی کہتے ہیں. جب انسان کو کہیں خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کسی طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور جب وہ کسی طاقتور کی پناہ لیتا ہے تو دراصل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں خود ہیلپ لیس ہوں. وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو کسی طاقتور کی پناہ میں آتا ہے نا. تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ میں کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ لیتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، میں بہت کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، اس لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. یعنی پناہ ہمیشہ لی جاتی کس کی؟ طاقتور ہستی کی. ظاہر ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو آپ کو اپنے حصار میں لے کر اور آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، اسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں نا، اسی کی پناہ میں آتے ہیں نا. کسی بچے کو تو نہیں آپ کہتے مجھے اپنی پناہ دے دو. تو دیکھیں، हमेशा आप किसी ताकतवर को देखते हैं। तो यानी जब आप ये कलमा कहते हैं तो आपने ये एतराफ किया कि अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो मुझे पनाह दे सकता है, वो मुझे बचा सकता है, और आपने ये भी एतराफ कर लिया कि मैं बहुत कमजोर हूं। ये तो एक इबादत हो गई ना। इसी में इंसान फिर अपना जोफ बताता है, अपनी कमजोरी बताता है। तो जब आप इस्तेआज़ा लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा कलिमा कह रहे हैं जिसमें तौहीद का आप इकरार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूं कि तावुज में चार चीजें हैं, आप इनको लिख लीजिए। क्या चार चीजें हैं? नंबर वन, मुस्ताईज यानी पला तलब करने वाला, वो कौन है? वो मैं हूं, आप हैं, सब इंसान है, सबको पनाह चाहिए। नंबर टू, कलमा इस्तेआजा। आपको ये नहीं भी अरबी में आते तो आप आगे लिख लें, पनाह का कलमा क्या है, यानी किस कलमा से आप पनाह मांगते। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है? तो ये पनाह का कलमा है। अब तीसरी चीज, मुस्ताद बिही, यानी किसकी पनाह तलब करना चाहते हैं, किसको पुकार रहे हैं कि मुझे पनाह दे दो। वो मुस्ताज भी ही है, वो है अल्लाह ताला। और चौथी चीज, मुस्ताज मिन हो, किससे आप पनाह चाहते हैं, किससे आप बचना चाहते हैं, किसके शर से आप चाहते हैं कि मेरी हिफाजत की जाए, मुझे पनाह दी जाए। वो मुस्ताज मिन हो जाता है और वो है शैतान। तो यहां पर ये चार चीजें हैं इस कलिमा में जो हमने ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, कि मैं पनाह चाह रही हूं अल्लाह से, और किस के शर से अल्लाह की पनाह चाह रही हूं, किसके शर से, शैतान के शर से। इब्ने कय्यिम ने इस मामले में एक बच्चे की मिसाल दी है, अब इससे आपको बात समझ आ जाएगी। कहते हैं कि एक बच्चे को किसी के शर का खतरा हुआ, यानी कोई उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे था। अब बच्चा कमजोर है, किसी की ज्यादती का, कोई उसको कत्ल करना चाहता है और उसके पीछे आता है, तो बच्चा दौड़ पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। अचानक उसके सामने उसका बाप आ जाता है। जब बच्चा बाप को देखता है तो कैसे उसके दिल को करार आ जाता है, कैसे वो मुतमईन हो जाता है, कैसे वो जाके अपने बाप से लिपट जाता है, और बाप अपनी बाहें खोल के बच्चे को अपनी आगोश में ले लेता है। उसको अब ये तसल्ली हो गई है बच्चे को कि अब मैं महफूज हूं, मेरा बाप आ गया, मेरे बाप ने मुझे थाम लिया, अब मैं बच जाऊंगा, अब कोई मुझे नुकसान नहीं दे सकता। तो इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ये तो मखलूक की मिसाल है, अल्लाह की मिसाल तो कोई दे ही नहीं सकता जो रब्बे कायनात है। सोचें, ये बच्चा बाप की पनाह में आके अपने आप को महफूज समझता है, हालांकि बाप तो एक इंसान है ना, जो अल्लाह की पनाह ले लेगा, फिर उसको कितना करार नसीब हो जाना चाहिए कि मैं तो उस ताकतवर की पनाह में आ गया, अब कोई चीज मुझे नुकसान नहीं दे सकती। तो आप इसको जब इस मिसाल से समझेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने कितने बड़े और कितने ताकतवर की पनाह ले ली। अब क्या मजाल है शैतान की कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए। तो सोच लें फिर ये कितना बड़ा कलमा है, कितनी अजीम बात है। और हम किस चीज से पनाह मांग रहे? शैतान से। क्यों? इसलिए कि शैतान ना हर शर का सोर्स है, हर गुनाह की जड़ है, हर नाफरमानी कराने की तरफ इंसान को लेकर जाता है। शैतान जो है ये जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। फर्क ये है कि जिन्नों के शैतान नजर नहीं आते, इंसानों के शैतान आपको नजर आ जाते हैं, वरना शैतान इंसानों में भी है। आज एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शयातीन है? फरमाया हाँ, इंसानों में भी है। अब वो शयातीन क्या करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो इतना जरूरी है ये कलिमा पढ़ना, क्योंकि शैतान से अल्लाह की पनाह में आके ही हम बच सकते हैं उससे, हम खुद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जब उसको अल्लाह ताला ने निकाला था ना, ये बड़े इबलीस की बात हो रही है। अव्वल तो सिर्फ वो ही शैतान नहीं है, मैंने आपको बताया शयातीन बहुत सारे हैं, उसके जाहिर लश्कर भी हैं, उसके चांटे चेले भी हैं, और इंसानों में भी उसके मददगार हैं या उसके एजेंट्स हैं। तो क्या इतना जरूरी है शैतान से अल्लाह की पनाह में आना? जी, इसलिए कि इसने दावा किया था अल्लाह ताला के आगे कि ए अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं इब्ने आदम में से एक एक को गुमराह करूंगा, सब के सब को, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। यानी उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बना लिया, उसकी ये जॉब है, वो ये काम 24/7 कर रहा है, वो कभी ब्रेक नहीं लेता, वो कभी वेकेशन पे नहीं जाता, वो कभी सुस्ती नहीं इसमें दिखाता, वो ये काम दिन रात कर रहा है और किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई नेक है यो या बद है, कोई आलिम है या कोई बुरा इंसान है, कोई अल्लाह का वली है चाहे या कोई अल्लाह से दूर है, किसी को नहीं छोड़ता, मोमिन है काफिर है, हर एक के पीछे पड़ा। उसका मकसद इब्ने आदम को, जितनी आदम की औलाद है, इसको गुमराह करना, ये उसका मकसद है। इसका जो नाम है शैतान, शा तो नून, ये है इसका मखरज जिससे ये शैतान लफ्ज बना, शैताना से। हर एक अरबी का जो लफ्ज है ना, इसका एक रूट होगा, एक उसकी असल होगी, एक उसकी यानी समझ ले एक बुनियाद होगी जिससे वो लफ्ज निकलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? दूर होना। तो शैतान जो है दूर है अल्लाह की रहमत से, नेक अमल से, सिराते मुस्तकीम से। और जब इंसान ये कलिमा पढ़ता है और बार बार पढ़ता है या अल्लाह का जिक्र करता है, तो शैतान भाग जाता है। हदीस में आता है, बंदा मोमिन अपने शैतान को थका मारता है जैसे तुम अपनी सवारी सफर में थका मारते हो। क्या मतलब? जैसे इंसान सवारी पे बैठे, ऊंट है या घोड़ा है, तो सुबह से उसको दौड़ाता जाए दौड़ाता जाए दौड़ाता जाए, और वो सवारी शाम तक थक के चूर हो जाए, गिर जाए। इब्ने कय्यम ने फरमाया कि यही हाल इंसान का होता है, जैसे कि इस हदीस में आता है कि शैतान को जो बंदा है मोमिन थका देता है जिक्र कर करके। तो इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ये कोड़े की तरह है, अल्लाह का जिक्र जो है ना, वो कोड़े की तरह है, शैतान की पीठ पर ये कोड़ा पड़ता है। और अगर कोई दिन रात कोड़े मार रहा है, तो सोचें फिर कि वो उस शैतान का क्या हाल होगा। इसका मतलब है कि अगर जितना ज्यादा हम अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पर जारी रखेंगे और ये तावुज पढ़ते रहेंगे, उतना ही हम शैतान के वारों से महफूज रहेंगे, वरना शैतान आके इंसान के दिल पर जम के बैठ जाता है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, फिर जब वो देखता है कि ये अल्लाह का जिक्र भूल गया है, तो फिर आके जम जाता है। इसका मतलब अल्लाह का जिक्र जरूरी है। और देखिए, हम तो इसको देख नहीं सकते हैं ना, अल्लाह इसको देख सकता है, वो ही हमें अपनी पनाह में ले सकता है, मगर जरूरी है कि हम अल्लाह की पनाह चाहें, मांगे अल्लाह से, अल्लाह हमें पर अपनी पनाह दे दे, मदद मांगे अल्लाह ताला से। एक सहाबी थे, उनको चलते चलते उनकी सवारी ने जैसे एक बिदक गई, गिराने लगी, तो उन्होंने कहा शैतान बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मत कहो, क्योंकि इससे शैतान खुश होता है, फूलता है कि देखो मैंने इसका काम बिगाड़ दिया, तो देखो अब ये मेरा नाम ले रहा है। तुम कहो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम सुन के शैतान कमजोर होगा, हकीर होगा, जलील होगा, छोटा हो जाता है वो। तो इसलिए कभी बच्चे गिरने लगते हैं, पता है ना, बड़े कहते हैं बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, तो वो ये नहीं कह रहे होते कि अल्लाह के नाम से गिर जाओ, वो कह रहे होते हैं अल्लाह का नाम। अब आगे हम बिस्मिल्ला भी आज देखेंगे, तो यानी शैतान को उस वक्त ना याद करें और ना ये कहें कि शैतान की वजह से ये हो गया, शैतान बर्बाद हो जाए, वो तो खुश होगा। तो ये हमारा दिन और रात का समझ ले एक वजीफा होना चाहिए, क्योंकि शैतान तो हमें बर्बाद करने के दर पे है, हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद करना चाहता है। हमें अलर्ट रहना होता है कि हम पहचाने कि शैतान इस वक्त मेरे अंदर ये वसवास डाल रहा है और मैंने अल्लाह की पनाह लेनी है। अल्लाह ताला की पनाह लेने के लिए जो कलिमात हैं, एक तो ये कलिमा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा एक और कलिमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की जो असमी है, सुनने वाला है, अल अलीम है, जानने वाला है, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से। रजीम का माना क्या है? रजीम रजम से है, रजम करना होता है ना, पत्थर मार मार के मारना, तो शैतान भी जो है अल्लाह ताला ने इसको धुतकारा हुआ, रद्द किया हुआ, कर्स्ड है ये, अल्लाह ने इसको दूर फेंक दिया। तो हम जब ये कलिमा कह रहे हैं तो फिर हम ये बात का एतराफ कर रहे हैं कि शैतान रजीम से मैं अल्लाह की पनाह में आ रही हूं। दूसरा एक और कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़्तिही, शुरू का तो वही है, आखिर में मिन हमज़िही, हम्ज़ हम आज़ाते शयातीन कहते हैं ना, हम्ज़ कहते हैं पोक करने को, जो वो पोक करता है मुझे। अब वो कैसे करता है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसका माना उलमा ने मजनून करना भी लिया है, ऐसा बावला कर देता है, और वसवास भी लिया है, और नफ़ ही, नफ़ कहते हैं नफ़ाए उला नफ़ाए सानिया, ये हम पढ़ते हैं ना, तो कयामत के जो नफ़ात हैं, फूंकना सूर का फूंकने के लिए, तो नफ़ा कहते हैं फूंकने को, तो उसकी फूंकों से भी, वो फूंके भी मारता है इंसान के दिल पे, तो उससे मुराद क्या है, उसका तकब्बुर मुराद है, और कैसे वो फूंके मारता है वल्लाहु आलम, उसने भी तकब्बुर किया था, वो इंसान को भी तकब्बुर में डालता है। और फिर तीसरी चीज वह नफ्स ही, नफ्स था के साथ, कि हम सूरह फलक में भी पढ़ते हैं ना, मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उकद, तो वो फूंके मारने वालियां, तो वो नफ्त वो वाली फूंक होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा थूक भी निकलता है, जिसको हम तुतकारना सा कहते हैं ना, थोड़ी सी थूक की छींटे भी आती हैं, तो वो भी करता है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस तरह से वो इंसान के पीछे पड़ा होता है। इसका फायदा फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला इससे बचा लेगा इन तमाम चीजों से। अब देखें, एक तो इसमें हमें क्या पता चला कि हमने हिफाजत पकड़ ली, हमने बचाव के लिए शैतान के वसवास से इसको पढ़ना है। दूसरे, जब हम कुरान करीम शुरू करने लगते हैं, जब भी पढ़ें तो तब हम क्यों पढ़ते हैं, उलमा कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे कि नमाज के लिए वुजू है, इसी तरह तावुज है कुरान पाक पढ़ने के लिए, यानी मैं अपनी जुबान को पाक करती हूँ कुरान पढ़ने से पहले। पता नहीं इससे पहले हम क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, लेकिन कुरान पाक इतना अजीम कलाम मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं अपनी जुबान को पाक कर लेती हूँ तावुज पढ़ के। ठीक है, अब क्या ये आपको मालूम है कि कब कब इसको पढ़ना चाहिए, कौन से मौके हैं इसको पढ़ने के, यानी कौन कौन सी जगह है इसको पढ़ने की? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुरान करीम पढ़ने से पहले तावुस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुरान पढ़ने से पहले, फिर दूसरे नबी अलैहिस्सलाम कयाम उल्लैल करते थे तो फरमाते थे, आउज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतान रजीम मिन हमजी व नफ़ही व नफ़्तही। यानी ये रात के अमल की हिफाजत है, और हम्ज से भी उसके अब वसवसे आएंगे जाहिर है। जब रात को आप कयाम उल्लैल के लिए जो भी तहज्जुद के लिए उठते हैं तो वो ये कलिमात पढ़ा करें। दोबारा मैं बता देती हूँ, आऊदु बिल्लाहि समील अलीम, ये दो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना आए, असमी और अल अलीम, यही दो क्यों आए यहाँ पे? अल्लाह तू सुनने वाला है, क्योंकि मैं तो उसके वसवास नहीं सुन सकती, मुझे तो दिल के अंदर बस ऐसे ख्याल आते हैं, तू है जो उसके वसवास सुन सकता है, और अलीम तू जानता है, अल्लाह मैं बचना चाहती हूँ, अल्लाह तू मुझे बचा ले। अच्छा, फिर मिन शैतान रजीम, शैतान रजीम से, मिन हमजी ही व नफ़ी व नफ़ी, वो मैंने आपको बता दिया। तो वो दुश्मन आपको रात में भी नहीं छोड़ेगा कि रात में भी आके वसवास डालेगा, इसलिए उस वक्त भी आपने ये पढ़ना। अच्छा, फिर इसी तरह जब गुस्सा तेज हो तब भी आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम ये पढ़ा जाए, क्योंकि गुस्सा भी शैतान की तरफ से, तरफ पता है ना, गुस्से में इंसान कितने बुरे काम कर लेता है, कितनी बुरी बातें बोल देता है, तो इसलिए इस दुश्मन से बचने के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए। फिर ये भी कि इंसान जिस वक्त बाथरूम में दाखिल होने लगे तब भी ये कलिमात पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अल खुबुसी वल खबाइस। फिर भी तावुज़ के ये भी कलिमात हैं, क्योंकि जो टॉयलेट्स हैं वो गंदी जगह हैं, और ये शयातीन को गंदगियां पसंद है, नजिस जगह पसंद है, तो वो वहां पे होते हैं, इंसान वहां पे जब जाए तो ये कलिमात पढ़ के जाए। फिर जब कभी खौफ आपको आए, डर लगे, तो भी आप तावुज़ के कलिमात पढ़ें। एक कलिमा उनमें ये भी है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून, ये आपको दुआओं की किताब में मिल जाएगा। जब नमाज में वसवसे आए आपको, और हम सबको आते हैं, तो फिर भी औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम पढ़ के लेफ्ट साइड पे थुतकार दें, ऐसे हल्का हल्का, जिसमें जैसे थूक भी होती है, उस तरह से आप बाई तरफ थुतकारें। इसी तरह ये भी उलमा कहते हैं कि जब आप किसी नई जगह पे जाएं, किसी वीराने में जाएं, तब भी पढ़ लिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता वीरान जगहों पे क्या ये चीजें हैं, इनका बसेरा वीरान जगहों पे होता है। इसी तरह जब दिल में बुराई का ख्याल आए तो फौरन आप पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आप कभी बैठे होते हैं अच्छे भले बैठे में, एकदम कोई ऐसा बुराई का ख्याल अंदर आने लगता है, खुद ब खुद पता नहीं कहां से आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये शैतान डाल रहा है कि ये कर लो आप। इस तरह बगैर किसी वजह के भी आप पढ़ते रहे, जरूरी नहीं कोई वजह ही हो तो फिर आपने पढ़ना, क्योंकि शैतान हर एक के साथ लगा हुआ, लेकिन ना किसी को नहीं छोड़ता, हर एक को बहकाता है, और अगर हम ये पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह बचे रहेंगे। देखिए शैतान ऐसा खबीस है, बाज दफा सारी जिंदगी नेकियां कराता है, और आखिर में आके इंसान से ऐसा कोई गुनाह करवा देता है कि उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो। मौत के वक्त के फितने इसको कहते हैं, मौत के वक्त भी नहीं छोड़ता इंसान। इसीलिए आप देखेंगे जब आप पढ़े स्टडी करें आप कभी, तो हमारे जो असलाफ थे ना, बुजुर्ग हमारे सलफ सालेहीन थे, वो जितना खात्मे के तसव्वुर से रोते थे, किसी और चीज से इतना नहीं रोते थे, इतना उनको रुलाती थी कि खात्मा हमारा खैर पे हो जाए, क्योंकि मरने के बाद जो अगले जहान में झांकना है ना, ये बहुत शदीद मंजर है, कि इंसान को पता नहीं होता वो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, मगर किस वक्त वो पलट जाए, कहीं नाफरमानी आ जाए, कहीं ऐसा कोई ख्याल, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसे बोल मुंह से वो अदा कर दे कि जिंदगी के सारी नेकियां जाया हो जाए, ये शैतान करवाता है, और यही उसकी कोशिश होती है, कहता कर लेने की कोई बात नहीं, आखिर में ऐसा इसको चक्कर दूंगा, सारी नेकी बर्बाद करा दूंगा। इंसान खुश होता रहता है, मैं तो बड़ी नेकियां कर, उसको पता ही नहीं होता मेरी नेकियां बर्बाद हो गई। इसीलिए एक बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है ना, तो उसको नेक अमल की तौफीक दे देता है, और जब वो नेक अमल करता है तो उसकी रूह कब्ज कर लेता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ खैर का इरादा फरमाता है ना, तो नेकियों के अंदर ही उसकी रूह कब्ज कर लेता है, ताकि नेक अमल करते करते वो दुनिया से जाए, उसका खात्मा नेकी पर हो जाए, और वो किसी बुराई में पड़े बगैर नेकी करते करते यानी अपने पीक टाइम में अल्लाह के पास चला जाए। हर एक को शौक होता है ना, अपने लोग बड़े बड़े जो लोग रिटायर होते हैं वो किस वक्त रिटायरमेंट लेते हैं, आपने बड़े खिलाड़ियों को देखा होगा, जिस वक्त वो कोई वर्ल्ड कप जीतते हैं, जब कोई बड़ी चैंपियन बनते हैं, तो वो कहते हैं अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि वो अपने पीक टाइम पे होना चाहते हैं। अल्लाह के पास जाना कितनी बड़ी बात है, इस दुनिया से रिटायर होना, इंसान हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं अपने पीक टाइम पे जाऊं, जब मैं नेकी में बहुत आगे हूं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल करे कि अल्लाह किसी के साथ इरादा करता है जब भलाई का, नेकी की तौफीक देते हैं, उसी नेकी के अंदर उसकी मौत वाके कर देता है, उसकी रूह कब्ज कर देता है, सुभान अल्लाह। तो ये है तावुज। अब तावुज में वैसे तो शैतान के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, हम उनमें जा नहीं सकते, आपको पता है तिलबिसे इबलीस एक किताब है, उसमें बहुत सारे इसके टैक्टिक्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे ये चाले चलता है, कैसे कैसे इसके मकर होते हैं, उसमें जाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको चंद एक बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो तकरीबन हर एक के साथ होते हैं। एक उसका टैक्टिक ये है, चाल ये है, मकर ये है कि इंसान को भुला देता है, भूल जो है ना, कि नमाज पढ़नी भूल गई, क्लास का टाइम ही भूल गया, क्लास में आना ही भूल गया, ग्रुप में जाना ही भूल गया, ज़कात देनी भूल गई, और मैंने नफली रोजा रखना था वो रोजा का ही भुला दिया, वो सदका करना था भूल ही गई। ये सब क्या है, ये भूल जो है ना, ये नेकी से जो भूल जाना है वो शैतान का काम होता है। नंबर टू, लेजी कर देता है इंसान को, सुस्ती, ये जो हम कहते हैं ना सुस्ती आ रही है, नींद बहुत आ रही है, ये जो नींद का आना है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान की तरफ से, यानी हर वक्त जो इंसान सोया सोया पे स्लीपी सा रहे ना, ये भी शैतान की तरफ से होता है। डायरेक्ट नींद के टाइम पे तो नींद आनी ही है, लेकिन बस हर वक्त जू ही आप कुरान पढ़ने बैठे उसी वक्त खराटे लेने शुरू हो गए, उसी वक्त नींद आने शुरू हो गई, तो ये शैतान की तरफ से होती है। अब आप कहेंगे इसका फिर इलाज क्या, तो फिर अब अभी जो बताया था तावुज़, अल्लाह की पनाह ले लें। अच्छा नंबर थ्री, ये जो हद से ज्यादा खौफ ज्यादा करना है, ये भी शैतान की तरफ से होता है, कि जब हम टू मच सोचने लगते हैं फ्यूचर के बारे में, या अपने पास्ट के बारे में, हाय ये क्यों हो गया, या हाँ ये ऐसा ना हो जाए कहीं, और फिर इतना सोचते हैं, इतनी वो फिक्र अपने पर तारी कर लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी शैतान की तरफ से होता है। शैतान ये ख्यालात ला के इंसान को डिप्रेस कर देता है, वो उम्मीद छोड़ देता है, वो मायूस हो जाता है, वो मरीज बन जाता है, ये याद रखें शैतान की तरफ से है, शैतान की तरफ से हमेशा ये याद रखें। तो ऐसे ख्यालात अव्वल तो आने के लिए अपने आप को इतना फारिगी ना रखें कि आप बैठे हुए और घंटों गुजर गए और आप उठ ही नहीं रहे, और अभी तक आप ख्यालों की दुनिया से ही नहीं निकल रहे, फिर उठ के कहते मुझे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन होने क्यों दिया, इतना अपने आप को आप मसरूफ करें कि आपको मौका ना मिले कि आप बैठ के इस तरह के ख्यालात सोचें। बहुत बुरा तो करोड़ों चीजें बुरी हो सकती हैं, अगर हर चीज को अपने ऊपर तारी कर लेना, कोई वीडियो देखी, कोई चीज सुन ली, कोई खबर आ गई, तो उसको आप सोच लेना कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, हाँ ये कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये चीजें ना शैतान लाता है। इसलिए बुरी चीजों को ऐसे जहन पे सवार ना होने दें, और ना ही टू मच ऐसे ख्यालात सोचें, ये वसवास है शैतान के। ठीक है, तो जब कभी ये आने लगे तब भी क्या करना है आपने, वो बच्चे की मिसाल को सोच ले, वो बच्चे ने बाप को सामने देखा कैसे उसे चिमट गया ना, कैसे उसकी पनाह में चला गया, बाप ने बाहों में ले लिया, तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपनी पनाह में ले लेगा, अगर हम भी अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। अल्लाह ताला तो फरमाता है फिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। हमारे पास तो और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि शैतान इतना बड़ा दुश्मन हमारे पीछे लगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन समझो। बाज लोग कहते नहीं कोई शैतान वैतान कोई चीज नहीं है, ऐसे ही बस बात नहीं। कुरान करीम में इसकी दलील है कि शैतान है, उसके चेले चांटे हैं, उसके लश्कर हैं, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने वादा किया हुआ मैं जहन्नुम में लेके जाऊंगा। अब ये भी वसवसा शैतान डाल देता है ना कि भाई कोई शैतान वैतान नहीं, हमारा अपना ही है ये। नहीं, शैतान है, लेकिन वो गन पॉइंट पे हमसे कुछ नहीं करा सकता, उसके अंदर कोई कुव्वत नहीं है कि हमसे कुछ करवाए। हाँ, वसवास जरूर डालता है, और यही उसके वसवास हैं जिनके जरिए वो हमारे साथ खेलता है, हमें बर्बाद कर देता है। जो इंसान देखे डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा, क्या कर सकेगा बताएं? कुछ अपने दुनिया में कोई बामकसद काम या कोई पॉजिटिव चीज कर सकता है? वो तो बेचारा अपनी हेल्प नहीं कर सकता, किसी और की क्या हेल्प करे, वो अपनी आखिरत क्या बनाएगा? तो इसलिए इससे निकलने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवास होते हैं जो तंग करते रहते हैं। तो अल्लाह की पनाह में आ जाइए। ये मैंने आपको कई तरह के कलिमात बताए, ये सब हदीस से साबित है। इनमें से कोई भी कलिमात आप पढ़ के अल्लाह की पनाह में आ सकते। फिर इसी तरह टालते रहना, काम को डिले करना, ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा होता है। ये जो हम कहते हैं ना अभी नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, वो कल आ गया तो फिर कल आ गया तो फिर कल, वो सारी जिंदगी से वो कल ही नहीं आके दे रहा जिसके हम मंसूबे बनाते रहते। तो वो जो कल कल है ना, ये शैतान का हरबा है। क्योंकि इंसान तो इरादा करता है मैं कर लेती हूं, लेकिन अब किस तरह इसको हटाए इससे? तो कल, जैसे हमने जब बच्चों को बहलाना होता है तो फिर वो हमें कहते हैं, कुछ जिद करते हैं, अच्छा नहीं बेटा ले दूंगी, कल ले दूंगी, चलो कल चलेंगे, इस तरह करके हम करते हैं ना उनको। तो शैतान भी इस तरह ही हमसे खेलता है और हमें समझ ही नहीं आती, हम भी पागल बन जाते हैं। नहीं अभी अभी क्या करूं, अभी तो मेरे बड़े काम है, अभी क्या करूं, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारियां। भाई नेकी की तरफ आने में ही क्या ये सारी जिम्मेदारियां याद आती हैं? अभी क्या करूं, अभी बच्चे छोटे हैं। ओ भाई बच्चे छोटे हैं तो वो तो दावतों के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, शॉपिंग के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, मिलने मिलाने के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, वेकेशन पे सैरों पे जाने के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, किसी चीज में ये ख्याल नहीं आता कि बच्चे छोटे हैं। हाँ जब कुरान की तरफ बुलाया जाए तो फिर क्यों फौरन जुबान से निकलता है नहीं अभी बच्चे छोटे? तो बच्चे क्या रुकावट बन के खड़े हो गए कुरान के रास्ते में? बच्चे कहते हैं कुरान ना पढ़ो, कुरान ना सीखना माँ, ये कहते नहीं समझे कि ये शैतान कुरान से दूरी कराना चाहता है। कुरान से क्योंकि वो इतने कुरान के बैर पड़ा हुआ है, वो इसलिए कि उसको पता है ये हिदायत का रास्ता है, ये तो हिदायत पा गई तो इसकी तो जिंदगी बदल जाएगी, ये तो फलाह पा जाएगी, कामयाबी पा जाएगी, ये तो अल्लाह से करीब हो जाएगी, कहां उसको ये बात गवारा है। और हम कैसे बुद्धू हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है, अदुव्वु मुबीन है, वो दुश्मन है खुला, फिर भी हम उसके ट्रैप में आते चले जाते। तो वो ऐसे फांस लेता है, और वो बच्चे तो कभी बड़े होके ही नहीं देते, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर अब बड़े हो गए, अब भी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो रही, वो तो मरते दम तक करने नहीं देगा। अब बड़े बूढ़ों से पूछ लें वो भी कहते हैं जी जिम्मेदारियां हमारी इतनी। अभी पिछले दिनों किसी से बात हुई तो वो कहने लगी, मैंने उनसे कहा कि आप तो आप फारिगुल बाल हैं, तो वो कहने लगी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और तरह की जिम्मेदारियां इनकी, अब बच्चों के बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारियां। तो वो कहने लगी आप लोगों को बताएं इस बात से, ये छोटे बच्चे वाले फारिग हैं, हम बड़े बच्चों वाले ज्यादा मसरूफ हो गए, अब हमारी जिस्मानी भी फिकरात है, वो जहनी भी फिकरात है, जहनी भी मुशक्कत है, जिस्मानी भी मुशक्कत है, क्योंकि जहनी फिकरात है, जिस्मानी मुशक्कत तो फिर भी खत्म नहीं होती, अब उनके बच्चों की खिदमत है। तो देखें शैतान तो कभी नहीं कराने देगा, हम जिन हालात में भी हैं जहां पे भी हैं हम वहीं पे पहला कदम उठा देंगे, हम नहीं उसकी बात को सुनेंगे। तो ये उसका बहुत बड़ा ट्रैप है, और हदीस में आता है टाल मटोल शैतान की तरफ से है। फिर आप ये भी देखें कि ये जो मैंने आपको अभी बताया कि अचानक से बैठे बैठे ख्यालात आ जाते हैं, कोई इस तरह बुराई की ये कर लूं, ये कह दूं, ऐसे किसी को कॉल करके कहूं उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैंने भी नहीं अब उसको माफ करना, ये भी सारे बैठे बैठे जो जहन के अंदर बातें आ रही थी ना, ये भी शैतान की तरफ से होती है, अनलेस के कोई खैर की बात जहन में आए। ठीक है, तो अब कितनी ज्यादा जरूरत है हमें तावुज़ की, बस अब फिर ये लेक्चर जब जब याद आए फौरन बैठे हैं खड़े हैं, कोई ऐसा बुरा ख्याल आ रहा है तो फौरन तावुज़ पढ़ लें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बसमल्ला की तरफ या तस्मिया की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी बी साथ, बी का भी माना है अरबी में, ये जो हर्फ है ना बी, इसके भी एक माना नहीं है, कई माने हैं, सुभान अल्लाह। तो ये भी कलमा हम कुराने पाक में आप देखते हैं हर सूरत से पहले लिखा हुआ, तो ये भी कलमा हम पढ़ते हैं जब हम कुरान खोलते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल फरमाई तो क्या फरमाया, इक़रा बिस्मी रब्बी के लज़ी खलक, इक़रा पढ़ किसके नाम के साथ, अपने रब के नाम के साथ पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। तो इसकी हुक्म की तामील में हम जब भी पढ़ेंगे तो हम अल्लाह के नाम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं बी बी को लें तो सात, सात का ज्यादातर हम तर्जुमा करते हैं, मगर मैं आपको और भी माने अभी बताती हूँ, पहले एक बात को समझें, बहुत ही खूबसूरत इसमें मीनिंग्स है, तो आज इसकी ब्यूटी समझें बसमल्ला की, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो आज ही आपने ये समझ लेना है। और आपका होमवर्क भी साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको मैंने कहा था ना छोटी नोटबुक या डायरी आपने अलग से एक रखनी है, उसमें लिखें अपना होमवर्क कि ये तावुज़ और बसमला की हमने प्रैक्टिस करनी है, और हमने इसको इसका जो मीनिंग है, इसके जो जो हमने इसके फजाइल पढ़े हैं आज, जो इसका मकसद है, ये हमने किसी ना किसी और को सिखाना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, तो इसलिए जब होमवर्क मिल जाता है ना ऐसा कि किसी और को भी समझाना है सिखाना है, तो फिर इंसान गौर से सुनता है, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपने लिए नहीं समझना, किसी और को समझाने के लिए भी समझना। ठीक है, अच्छा अब बी और इसम ये दो मिल गए तो बिस्मी बन गया। इसम का तो मतलब आपको पता है ना, इसम किसको कहते हैं, नाम को, बी साथ इसम नाम, अब मर्ज हो गए तो बिस्मी हो गया। बिस्मी और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ, अच्छा अल्लाह के नाम के साथ क्या क्या, अल्लाह के नाम के साथ यानी कुछ चीज तो मिसिंग है इसका मतलब, कोई मतलब क्या क्या चीज, अल्लाह के नाम के साथ मैं खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, क्या अल्लाह के नाम के साथ, मसलन मैं आपको कहूँ गाड़ी की चाबी के साथ, तो आप कहेंगे क्या, मतलब इट्स इनकम्प्लीट ना, समथिंग इज मिसिंग, गाड़ी की चाबी के साथ मैं जाती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं घर से निकलती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं मार्केट गई, कुछ कुछ तो बोलूँ ना, कोई फेल तो इसके साथ होना चाहिए ना, फेल समझते हैं ना वर्ब, यानी कोई काम तो इसके साथ लगा होना चाहिए, वरना आप सिर्फ मैं गाड़ी की चाबी के साथ तो क्या। ठीक है, आपको पता है बिस्मिल्लाह के अंदर कोई फेल अभी तक नहीं आया, आगे तो देखें रहमान और रहीम है, तो क्या अल्लाह के नाम के साथ क्या, ये फेल यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये क्यों मिसिंग है, क्या वजह इसकी मिसिंग होने की, यानी यहाँ पे ये नहीं कहा गया अल्लाह के नाम के साथ मैं कुरान शुरू कर रही हूं, अल्लाह के नाम के साथ मैं कुरान पढ़ रही हूँ, अल्लाह के नाम के साथ मैं लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ये मिसिंग है, गौर से सुने इस बात को, ताकि ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आए, यानी जो भी मैं कर रही हूं, तो मैंने अगर ये कह दिया ना बिस्मिल्लाह तो आगे फेल महजूफ है, यानी फेल यहाँ पे मिसिंग है, यानी जो भी मैं कर रही हूंगी वो फेल यहां पे आ जाएगा, इसलिए कोई स्पेसिफिक फेल नहीं यहां पे डाला गया, वरना अगर आ जाता अल्लाह के नाम के साथ, मैं पढ़ रही हूं तो सिर्फ पढ़ने के लिए ये बसमला इस्तेमाल हो सकता था, आप पढ़ सकते थे, बाकी किसी चीज के लिए भी नहीं पढ़ सकते थे। मसलन खाना खाने वक्त आपने ये तो नहीं कहना था बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रही हूं ना, आप ये तो नहीं कह सकते थे बिस्मिल्लाह है अक्तुब, बिस्मिल्लाह मैं लिख रही हूँ, बिस्मिल्लाह ही अकरा, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रही हूँ, आप ये तो नहीं कह सकते थे। फिर खाना खाते हुए, दरवाजा खोलते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, आपको स्पेसिफिक फिर हो जाना था। तो यहाँ हिकमत है इसमें कि अल्लाह ताला ने फेल यहाँ पे नहीं लाए, कि अल्लाह ताला ने इसको ओपन छोड़ दिया कि जो भी एक्शन कोई कर रहा होगा उसके मुताबिक ये बिस्मिल्लाह होगी। यानी मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके साथ जब बिस्मिल्लाह कह देती हूँ तो उस काम के लिए वो बिस्मिल्लाह बन जाती है। तो फिर अब मैं जिंदगी के हर शोबे के लिए इसको पढ़ सकती हूँ। यानी मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, लेट रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुकिंग शुरू कर दी, बर्तन धो रही हूँ, सफाई करने लगी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से लेके किसी से चीज पकड़ रही हूँ, दरवाजा खोल रही हूँ, गाड़ी में बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, तो मैं फिर किसी काम के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, किसी काम में भी ये पढ़ सकती हूँ। और जो फेल है, एक और भी हिकमत बताती हूँ, बिस्मिल्लाह के बाद आए के पहले ये आना चाहिए, मैं पढ़ रही हूं अल्लाह के नाम के साथ, या बिस्मिल्लाह ही अक्तुब, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ मैं लिख रही हूं, ऐसे होना चाहिए। तो उलमा कहते हैं फेल बाद में आएगा, काम हमेशा बाद में रखा जाएगा, अल्लाह का नाम पहले आएगा, ये नहीं कि मैं शुरू कर रही हूं अल्लाह के नाम के साथ, नहीं, अल्लाह के नाम के साथ फिर कहें मैं शुरू करती हूं, ये ताजीम है अल्लाह के नाम की। ठीक है। अच्छा, अब बा के माने मैंने आपको कहा कि मैं आपको और भी बताती हूँ, बा के तीन माने यहाँ पे तो जरूर आप लिख लें, एक और भी चौथा भी बता दूंगी लेकिन तीन आप लिख लें। एक बा है जो मैंने आपको बताया मुसाहिबत का, मुसाहिबत क्या मतलब, मुसाहिबत जिसको कहते हैं साहब से, सहाबा भी इसी से होता है ना, मीम स्वाद अलिफ हा बा ता, मुसाहिबत का। तो मुसाहिबत में क्या होता है, साथ, सहाबी भी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, राइट, तो यानी साथ के लिए है ये बा, साथ के लिए, यानी अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह तेरे नाम के साथ, यानी अल्लाह ताला को आप याद करती हैं। आपने कह दिया कि अल्लाह ताला मैं ये अहम काम करने जा रही हूं या ये कोई भी काम करने जा रही हूं, अल्लाह साथ तेरा नाम ले रही हूँ, साथ तेरा जिक्र कर रही हूं, तेरे ख्याल के साथ मैं ये काम कर रही हूं, ठीक है, तेरी याद इसमें साथ है, चाहे वो दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम हो, मगर हमें अल्लाह ताला का साथ चाहिए ना, अल्लाह तेरे साथ, फिजिकली नहीं, मतलब है कि अल्लाह मेरे साथ हो जाए बस, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इस्तेआनत का मानी है, इस्तेआनत या का नस्ताइन पढ़ते हैं ना, क्या मतलब होता है या का नस्ताइन आ रहा है ना इसमें, तो इस्तेआनत मतलब क्या, मदद के लिए, यानी जब आप बी कहते हैं तो अल्लाह तेरी मदद के साथ, कि अल्लाह तेरे बगैर ये काम नहीं मैं कर सकती, जितने भी असबाब में मेरे पास, गाड़ी की चाबी भी है, गाड़ी भी है, मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, लेकिन अल्लाह ये चलेगी नहीं जब तक तेरी मदद ना हो, अल्लाह मैं पहुंच नहीं सकती जब तक तेरी मदद ना हो, अल्लाह ये काम पूरा नहीं होगा जब तक तू ना मदद करे, मैं खाना पकाने लगी बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरी मदद के साथ, अल्लाह मेरा खाना पक ही नहीं सकता जब तक तू ना मदद करे, ठीक है। तो यानी ये काम के लिए अल्लाह ताला की मदद को शामिल हाल करने का एक तरीका है कि आप बिस्मिल्लाह जब कहते हैं तो अल्लाह ताला को मदद के लिए आपने एक तरह से पुकार लिया। तीसरी चीज, तबर्रुक के लिए, यानी बरकत के लिए, बरकत क्या होती है, खैर, हम कहते हैं ना बरकत चाहते हैं हम हर चीज में, हम कहते हैं मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरे इस काम में बरकत हो जाए, तो इस बरकत के लिए भी आप ये कलिमा पढ़ते हैं, ये बी का माना बरकत भी है, अल्लाह तेरे नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, या तेरे नाम की बरकत से मैं लेटती हूँ, तेरे नाम की बरकत से मैं खाती हूँ, तेरे नाम की बरकत से मैं चलती हूँ, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बरकत चाहते हैं। बरकत खैर कसीर को कहते हैं, बहुत सारा खैर, बहुत ज्यादा खैर मुझे मिल जाए ना, खत्म होने वाली खैर। तो हर चीज में हमें खैर चाहिए ना, बजाहिर हम, हो सकता है कोई काम नहीं हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अल्लाह इसके अंदर खैर डाल देना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से ना शुरू किया जाए ना, वो काम अधूरा होता है, जड़ कटा होता है। ठीक है, तो इसी तरह उलमा कहते हैं अलबाउ लिल कबूल, बा कबूल के लिए भी है। वो होता है इस बा के तो बड़े बड़े तर्जुमे किए गए हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी माने हैं ये सब मुराद हो गए जब आपने ये बिस्मिल्लाह पढ़ ली। तो बिस्मिल्लाह कोई रस्मी कलिमा नहीं है, ये बहुत बड़ा माना अपने अंदर रखता है। तो कबूल के लिए मतलब अल्लाह ये मेरा काम कबूल भी हो जाए। अब चाहे वो कोई नेकी का काम है, चाहे वो कोई दुनिया का काम है, अपने बच्चों को आप देख रही हैं, आप घर की सफाई कर रही हैं, अल्लाह कबूल कर लेना इसको, इसमें भी राजी हो जाना मेरे से, यानी मैं तेरी खातिर तेरा नाम जो अंदर ले लिया, तू राजी हो जाना इससे, तू कबूल कर लेना इस काम को मेरे हक में। तो आप खाना बना रही हैं, आप कुछ बर्तन धो रही हैं, आप अपने घर वालों के लिए एक सर्विस दे रही हैं, खिदमत कर रही हैं उनकी, आप अपनी जिम्मेदारी एक पूरी कर रही हैं, हकूक उनके अदा कर रही हैं, तो वो भी बिस्मिल्लाह के साथ कि अल्लाह इनको भी नेकियों में कबूल कर लेना, इस पे भी राजी हो जाना, तो कितनी बड़ी बात है बिस्मिल्लाह। हाँ बताएं, अब आप मुझे मानते हैं आप इस बात को? तो कब कब पढ़ें फिर इसको? कुरान पाक पढ़ने से पहले तो पढ़ना ही है, क्योंकि तो अल्लाह ताला का नाम लेके ही अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ा जाए। फिर जब कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए थे तो फिर भी बिस्मिल्लाह ही मजरेहा व मुरसाहा पढ़ा था, तो आप भी सवारी में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े। खत लिखते वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, खत में भी सूरह नमल में आता है कि जब खत लिखा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह के साथ लिखा था खत। तो खत लिखते वक्त, किसी के साथ खतो किताबत करते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर इसी तरह जब मियां बीवी का ताल्लुक अपना करें तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, और वजह क्या है उसके अंदर भी ये पता हमें चलता है कि शैतान इसके अंदर भी आने की कोशिश करता है, तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मिम्मा रज़क़तना, तो ये पढ़ें ताकि शैतान इसमें शामिल ना हो। और वो अगर इस अमल से कोई औलाद पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसको पैदा होते वक्त शैतान के हमले से महफूज रखता है। ठीक है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे तो बिस्मिल्लाह से उसका आगाज करते थे, बिस्मिल्लाह यरकीका मिन कुल्ली शैइन युसीका, आपने पढ़ा होगा शिफा की दुआओं में। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह घर से निकलना है या घर में दाखिल होना है बिस्मिल्लाह के साथ। घर से निकलना है तो निकलने की आपको पता है ना दुआ, बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान भी फिर हमला नहीं कर सकता। जब आप ये दुआ कह के आप घर से निकलते हैं तो शैतान कहता है अब मेरा इसके ऊपर हमला नहीं होगा, और घर में दाखिल भी हो तो बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हो, वरना शैतान साथ दाखिल हो जाता है। और वो कहता है कि मुझे तो रहने की जगह मिल गई। जब खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। और इसी तरह जब अगर इंसान को खाते वक्त, शुरू करते वक्त नहीं याद रहा बिस्मिल्लाह कहना, तो फिर बिस्मिल्लाह ही अव्वल हो आखिर हो ये दरमियान में भी कह सकते हैं। वुजू करते वक्त जब इंसान वुजू करे तो बिस्मिल्लाह के बगैर वुजू ना शुरू करे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करके वुजू करना है, ये भी हदीस में आता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी जब हम रात को दरवाजे बंद करते हैं ना, ये हमारे होमवर्क का हिस्सा है, आज हमने दरवाजे जब लॉक करने हैं, चाहे कमरे का दरवाजा है चाहे घर का दरवाजा है, एक दफा रात को देखते हैं आप सोने जाने से पहले के सब लॉक्स हैं, या दिन में भी किसी को रुखसत करते हैं तो दरवाजा बंद करते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। चिराग गुल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी हम तो लाइट्स ऑफ करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। बर्तन ढांकते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। इसी तरह मश का मुंह बंद करते वक्त, यानी मशक होती थी ना उस वक्त लेदर बैग्स होते थे, तो उनका मुंह बंद कर देते थे, तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। यानी जैसे आप पानी की बोतल है उसको बंद कर रहे हैं, दूध की बोतल है उसको बंद कर रहे हैं। और फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स अमले तजव्वुज के वक्त कहे बिस्मिल्लाह, अल्लाह हमको शैतान से महफूज रख, और जो औलाद हमको अता करे उसको भी शैतान से महफूज रख, तो अगर इस अमल के नतीजे में औलाद मुकद्दर की जाएगी तो उसको भी अल्लाह ताला शैतान के जरर से महफूज रखेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबी सलमा से फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। और आपने फरमाया, हर खाने को हलाल कर लेता है शैतान सिवाय उस खाने के जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, यानी हर खाने में शामिल हो जाता है सिवाय जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। ठीक है। फिर इसी तरह एक सहाबी थे हजरत उस्मान बिन अबुल आस, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे जिस्म में बड़ा दर्द रहता है, तो आपने फरमाया, 3 बार बिस्मिल्लाह करो कहो, और फिर 7 दफा करो कहो, आऊज़ु बि इज्जतिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी, जो भी किताबें हैं इसकी दुआओं की उनमें मिल जाएंगी। इसी तरह जानवर कोई जिबा करे तो वो भी बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कह के छुरी फेरे। रात को सोते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ के सोना चाहिए। इसी तरह मैयत को कब्र में उतारते वक्त बिस्मिल्लाह ही वाला मिल्लत रसूलिल्लाह इसको कह के मैयत को कब्र में उतारा जाए। फिर आप देखें, बिस्मिल्लाह का एक कलमा तो आप हर किस्म के शर से बचने के लिए भी सुबह शाम की अपनी दुआओं में शामिल रखें, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाअ वहुवा समीउल अलीम। ये आप सुबह शाम की दुआओं में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये बड़ी जामे दुआ है। देखिए, ये भी अल्लाह के नाम के साथ है, जिसके नाम के साथ कोई चीज आसमान और जमीन की नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जैसे तावुज़ हमारी जिंदगी के अंदर शामिल होना चाहिए, इसी तरह बसमला भी शामिल होना चाहिए।